परिवेश। राकेश की कहानियों में चित्रित परिवेश कहानी की मूल संवेदना से संबद्ध, पात्र की मन स्थिति के प्रतिरूपक और समसामयिक जीवन का चितेरा है। चाहे महानगरीय परिवेश हो या ग्रामीण परिवेश, या फिर किसी यात्रा या संस्थान का परिवेश हो, और चाहे वह उच्च वर्गीय हो, सबके चित्रण में राकेश ईमानदार रहे हैं। उनकी कहानियां समकालीन परिवेश की कहानियां हैं। नोट: एक क्वार्टर ग्लास टैंक पृष्ठ 94, पृष्ठ 122। फलतः उनमें चित्रित वातावरण भी अपने आप में किसी महत्वपूर्ण पात्र से कम अहमियत नहीं रखता है। राकेश की कहानियों का जो कथ्य है वह किसी अकेले व्यक्ति का नहीं है, वह हमारे समय का है, और वह है आकुलता, गहरा असंतोष और विद्रोह का। इस सबको शब्दबद्ध करने के लिए राकेश ने प्रायः हरेक कहानी में एक परिवेश दिया है। उसकी भूमिका पर कहानी का जो विकास हुआ है, उसे जो गति प्राप्त हुई है और जो रूप प्राप्त हुआ है, वह राकेश की परिवेश प्रतिबद्धता को तो प्रमाणित करता ही है, वह भी संकेत देता है कि कहानीकार के पास कैसी अंतर्दृष्टि है और उसकी संवेदना में जीवन का कितना अंश समाया हुआ है। राकेश की कहानियों में सेफ्टी पिन, मलबे का मालिक, पांचवें माले का फ्लैट, जख्म, एक ठहरा हुआ चाकू, जानवर और जानवर, परमात्मा का कुत्ता, हक हलाल, फटा हुआ जूता, उसकी रोटी, बस स्टैंड की एक रात, आखिरी सामान, चौगान, सौदा और सोया हुआ शहर आदि परिवेश चित्रण की दृष्टि से विशेष प्रभावी बन पड़ी हैं। इनका परिवेश मध्यवर्गीय, उच्च वर्गीय, निम्न मध्यवर्गीय और सरकारी, गैर सरकारी शिक्षा संस्थान और त्रासद जीवन का परिवेश है। जख्म कहानी में नगरीय परिवेश को एक खास कोण से चित्रित करते हुए राकेश लिखते हैं, सड़क के उस तरफ पत्थर के खम्भों से डोलचों की तरह लटकते कुमकुमे एक से रोशनी नहीं दे रहे थे। रोशनी उनके अंदर से लहरों में उतरती जान पड़ती थी, जो कभी कभी हल्की कभी गहरी हो जाती थी। रोशन के साथ साथ कॉरिडोर की दीवारों, आदमियों और पार्क की कई गाड़ियों के रंग हल्के गहरे होने लगते। बिजली के ऊपर आसमान से सटकर अंधेरा हल्की धूल की तरह इधर से उधर मंडरा रहा था। कुछ अंधेरा पास के कोने में बच्चे की तरह दुबका था। ठंडी हवा पतलून के पांवों से ऊपर को सरसरा रही थी। इसी प्रकार सोया हुआ शहर कहानी का प्रारंभ ही परिवेश के चित्रण से हुआ है। उसमें रात के घने अंधेरे में निद्रालस शहर का वर्णन किया गया है। वहां खाली सड़क पर फैली हुई पतली चमकदार झिल्ली की तरह की रोशनी, दौड़ते कुत्ते व बस स्टॉप के शेड से सटा पेड़ और उसके पीछे के आसपास का परिवेश बिंबात्मक शैली में प्रस्तुत किया गया है। इसमें पाठक के मन को बांधने की पूरी क्षमता है। खाली सड़क पर सिर्फ रोशनी नजर आती है, एक पतली चमकदार झिल्ली की तरह यहाँ से वहां तक फैली हुई। एक दुम हिलाता कुत्ता झिल्ली से ऊपर दौड़ता चला जाता है, जब तक कि वह मोड़ नहीं आ जाता, जहां पृष्ठ 123 जाकर उसकी दौड़ खत्म हो जाती है और वह चुपचाप कुछ देर हवा को सूंघकर एक कोने में दुबक जाता है। कोने के खंभों की रोशनी और सब खंभों से अलग और बहुत मध्यम नजर आती है, मध्यम और अंतर्मुख, जैसे कि सुलगने का क्षण आने पर भी उससे सुलगान ना जा सका हो। बस स्टॉप के शेड से सटा पेड़ काफी धुंधला और घना नजर आता है। खिड़कियों की बत्तियां बुझी रहने पर यह पता नहीं चलता कि उसके पीछे कोई मकान भी है। राकेश का व्यक्तित्व एक नाटककार का व्यक्तित्व था, अतः उनकी कहानियों में चित्रित परिवेश में पर्याप्त नाटकीय आभास है, नाटकोचित संस्पर्श है। यही कारण है कि राकेश किसी स्थान का, कमरे का और उसमें रखे साजो सामान का वर्णन भी वैसे ही करते हैं जैसे किसी नाटकीय दृश्य का निर्देशन लिख रहे हों। एक ठहरा हुआ चाकू में चित्रित यह वर्णन देखिए, कमरे में कुछ एक कुर्सियाँ थीं लकड़ी की, वैसी ही जैसी सब पुलिस स्टेशनों पर होती हैं। कुर्सियों के बीचों बीच एक मेज नुमा तिपाई थी, जो कि कुहनी ऊपर रखते ही झूलने लगती थी। 8 फुट और 8 फुट का वह कमरा इनसे पूरा घिरा हुआ था। टूटे पलस्तर की दीवारें कुर्सियों से लगभग सटी हुई जान पड़ती थीं। शुक्र था कि कमरे में एक दरवाजे के अलावा एक खिड़की भी थी। स्पष्ट ही यह उदाहरण एक नाटककार की कहानी नुमा उदाहरण है। इसमें चित्रित परिवेश उसकी सूक्ष्म अंतर्दृष्टि का प्रमाण है। वस्तुतः राकेश ने परिवेश के चित्रण में यथार्थ दृष्टि से काम लिया है। यही कारण है कि उनकी कहानियों में आया परिवेश मन को बांधता है, हमारे मन में एक गहरा बोध जागता है। जिस तरह उनकी कहानियों में जीवन संकेतित है, उसी तरह चित्रित परिवेश की पीठिका पर समकालीन व्यक्ति अपनी पूरी तस्वीर के साथ उतरता चला गया है। भाषा शैली। भाषा वह माध्यम है जिसके सहारे एक व्यक्ति और परिवेश का सत्य दूसरे तक पहुंचता है। परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर घटित होती रहती है और उसी के कारण स्थिति, परिवेश और व्यक्ति की मन स्थिति भी बदलती हुई नया रूपाकार ग्रहण करती रहती है। यहाँ तक कि स्वयं भाषा की प्रकृति भी गत्वर है। यदि वह ऐसी न हो तो परिवर्तित जीवन दृष्टि को कैसे व्यंजित कर सकती है, उसकी समकालीनता कैसे बनी रह सकती है। फिर आज तो यह समस्या और भी उलझ गई है, किंतु संतोष है कि समकालीन रचनाकार उसे अपने ढंग से पृष्ठ 124 सुलझाते हुए शब्दों में छिपे नए मौलिक अर्थों की खोज कर रहे हैं। इतना ही क्यों, वे शब्दों का निर्माण भी कर रहे हैं। अपने अनुभूत सत्य की व्यंजना के लिए अन्य भाषाओं से शब्द का ऋण भी ले रहे हैं, किंतु यह शब्द ऋण ऐसा है जिस पर कोई ब्याज नहीं लगता और न उसके बोझ से ऋणी ही दबता जा रहा है। कारण यह ऋण एक दूसरे को समझाने समझने के लिए है, अपनी बात को गहराई से व्यक्त करने के लिए है और यथार्थ स्थितियों के सीधे साक्षात्कार के लिए है। नई कहानी की भाषा में भी यह स्थिति दिखाई देती है। परिवेश के प्रति प्रचेता प्रज्ञा रखने वाले राकेश की कहानियों में प्रयुक्त भाषा के तेवर बदले हुए हैं। उनका मिजाज सहजता का है, साधारणता का है। वह सीधी सपाट, अर्थवान और सार्थक भाषा है। राकेश भाषा को मात्र शब्दों का संयोजन नहीं मानते थे, वे तो उस संयोजन से प्राप्त होने वाले अर्थ को महत्व देते थे। यह अर्थ किसी शब्द विशेष के आश्रित न होकर समूची शब्द संरचना से निकली ध्वनि, स्वराघात और उसकी विन्यास पद्धति पर निर्भर है। कारण शब्द तो उपकरण भर है, उपकरण के रूप में उसकी सामर्थ्य या असामर्थ्य ही एक विशेष संदर्भ में उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति का कारण बन सकती है। अतः कहानीकार भाषा की व्यवहारिकता का पक्षपाती है। कहानी के संदर्भ से भाषा की बात को किसी भी कोण और धरातल से देखें, वह जिंदगी और यथार्थ पर जाकर ही टिक जाती है। कारण उसी से हम जिंदगी को जीते, समझते और अभिव्यक्ति देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आज का कहानीकार साहित्यिक अथवा फॉर्मूलाबद्ध भाषा से बचना चाहता है, क्योंकि वह जनमानस को प्रभावित करने की क्षमता नहीं रहती है। राकेश की भाषा एक ऐसी ही रचनाकार की भाषा है जिसमें शब्द सीधे साधे किंतु गहन अर्थोद्घाटक व यथार्थ से संप्रयुक्त और अनुभूति के ताप संताप को बखूबी व्यंजित करने की क्षमता से युक्त हैं। उनकी भाषा अनुभूति और संवेदना के अनुरूप है, उसमें लेखक व पाठक के बीच मैत्री स्थापित करने का गुण है। हाँ, वह गुण उसमें केवल शब्दों के सफल प्रयोग के कारण ही नहीं आया है, अपितु व्यंजकता, सांकेतिकता और सपाटता के कारण भी आया है। भाषागत विशेषताएं। एक, राकेश की भाषा में प्रयुक्त शब्द तीन स्तरों पर दिखाई देते हैं। साहित्यिक स्तर, जिसमें परिष्कृत शब्दावली आती है, जन भाषा का स्तर और देशी विदेशी शब्दावली के योग से बनी भाषा का स्तर। परिष्कृत शब्दावली का प्रयोग राकेश ने वहाँ किया है जहाँ वे अधिक भावुक उठे हैं और उनकी कवित्व शक्ति मुखरित हो उठी है। यद्यपि ऐसा कम ही हुआ है, किंतु जहाँ हुआ है वहाँ राकेश का संस्कृत ज्ञान भी प्रकट है। परिधि, वृत्त, केंद्र, विचारधारा, भ्रांत, शैशव, विडम्बना पृष्ठ 125, विश्वमय, अंतर्मुख, साक्षी, वागदान, अंकुर, शून्य, आकाश, अव्यक्त, शैथिल्य, अवसन्न, निश्चेष्ट, मांसलता, एक, आलिंगन, अनेकानेक चुंबन, अदृश्य सूत्र, जड़ता, दो, अवचेतन, नक्षत्र, सहसा, लोकाचार, पारदर्शिता, अंतरिक्ष, अनिश्चित, रहस्यमय, अंतर्वेदना, 3 विकासखंड, आकाश चित्र, शव दाह, पीड़ा, उग्रता, उपासना, महत्वपूर्ण, संभ्रांत, शिष्टता, प्रतिभा, तुकांत, सम्मिश्रण, आहुति, महाविश्वमेघ। 4 आत्मा, मूड, उद्यान बिहार, तिरस्कृत, निरुद्देश्य, कृत्रिम, भ्रष्ट, तापमान, अभिवादन, कला प्रदर्शनी, शिथिल शक्तियाँ, अस्पष्ट, चित्रमय, शरीरमय, प्राणमय, उच्चारण में भ्रातृत्व की गंध, भक्ति दर्शन, उत्तेजित, महत्वाकांक्षी, अर्थपूर्ण दृष्टि, आत्मीयता, आत्मीयता का आवरण, सौजन्य, भंगिमा की उपेक्षा, भूमिका का वांछित परिणाम, देखघर भी अनभिज्ञ सा बोला, चेष्टा करूंगा। 5 क्षितिज, दृश्यपट, निश्चलता, त्रुटियों की क्षतिपूर्ति, मानसिक विकृतियां, आदिम संस्कार, ममता, आर्द्रता, ग्लानि, मनोविद। 6 और कितने ही ऐसे शब्द हैं जो राकेश की कहानियों में प्रयुक्त हुए हैं। ध्यान देने की बात यह है कि यह परिष्कृत शब्दावली अनायास ही आ गई है। हाँ, कहीं कहीं वैचारिकता के आग्रह से, कहीं व्यंग के लिए और कहीं कवित्व के आग्रह के कारण ऐसे शब्द स्वतः ही आते गए हैं। नोट: 1 पहचान, उर्मिल जीवन कहानी में आए शब्द। 2 पहचान, सुहागिने कहानी में आए शब्द। 3 वारिस, एक और जिंदगी कहानी में आए शब्द। 4 वारिस, एक आलोचना कहानी में प्रयुक्त शब्दावली। 5 क्वार्टर, धुंधला दीप कहानी में प्रयुक्त शब्दावली। 6 क्वार्टर, अपरिचित कहानी में प्रयुक्त शब्दावली। 2 भाषा का दूसरा रूप वह है जहां राकेश ने निहायत बोलचाल के शब्दों से अपने कथ्य को संप्रेषित किया है। उनकी भाषा का असली रूप बोलचाल के शब्दों के मेल से ही बना है। यही वह स्तर है जो उनकी भाषा को सीधी, सरल और व्यवहारिक बनाता है। उदाहरण के लिए उनकी सभी कहानियों में देखे जा सकते हैं। स्पष्टीकरण के लिए ये प्रयोग देखिए: अ, कभी यह सोचकर भी उसके शरीर में झुरझुरी भर जाती कि इतने सालों में वह हर रोज दोनों वक्त दो आदमियों का, सिर्फ दो आदमियों का खाना बनाती आ रही है। ब, उसका चौड़ा चौकोर चेहरा वैसे ही भयानक था, अपने ढीले ढाले सूट में वह और भी भयानक लग रहा था। चेचक के दागों और झुर्रियों से भरा उसका चेहरा दीमक खाई लकड़ी की तरह जान पड़ता था। दूर से ही उस आदमी की आवाज सुनकर वचन का दिल धड़कने लगता और वह अपना दरवाजा बंद कर लेती। 2 स, घिसा हुआ जूता बंबई की पटरियों पर बहुत सफाई के साथ फिसलता है, और राय का जूता तो फिसलते समय शब्द भी किया करता था। मेज के नीचे रद्दी की टोकरी के पास उसका जूता पड़ा था जो उसने बाहर से आते ही खोलकर रख दिया था। जूते के मैले सिकड़े हुए तलवे तिरछे होकर आधा आधा इंच ऊपर को सरक आए थे। पीछे की दोनों ओर की सीबने उघड़ रही थीं। 3 द, वह बिना लाग लिहाज के किसी के भी मुंह पर सच बात कह सकता था। 10 आदमियों के बीच अलफ नंगा होकर नहा सकता था। अपनी जेब का आखिरी पैसा तक किसी को भी दे सकता था। 4 क, एक साइकिल मस्ती से चलती हुई गली की तरफ मुड़ी जाती है। एक कार बिना हॉर्न दिए तेजी से निकल जाती है। कुत्ता मुश्किल से अपने को उसकी लपेट से बचाता है। उसका भौंकना गुर्राने में बदल जाता है। बीच बीच में जैसे अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए एकाध बार भौंक भी लेता है। मकान की छत पर टहलती छाया सड़क की तरफ झुक जाती है। औंधी रखी चरपाइयों के पाए उसके आसपास एक चौखटा सा बना देते हैं। सामने को चिमनी से दो टूटे पंख हवा में गोल गोल तैरते हुए नीचे उतर आते हैं। 5 कहने की आवश्यकता नहीं कि कहानियों से दिए गए ये उदाहरण प्रमाणित करते हैं कि उनकी भाषा का सही रूप यही है, सीधा, सपाट और सरल व व्यवहारिक। भाषा की यह सपाटता, व्यवहारिकता और सादगी उनकी प्रायः सभी कहानियों में मिलती है। भाषा के इस रूप का निर्माण बोलचाल व जनभाषा की शब्दावली से किया गया है। इसमें एक सहजता है, आत्मीयता है। नोट: एक, क्वार्टर फौलाद का आकाश कहानी, पृष्ठ 189। दो, क्वार्टर आर्द्रा, पृष्ठ 63। तीन, वारिस फटा हुआ जूता, पृष्ठ 132। चार, वारिस जख्म, पृष्ठ 232। पाँच, वारिस सोया हुआ शहर, पृष्ठ 68। पृष्ठ 127। तीन, भाषा का यह तीसरा रूप है जिसमें राकेश ने धड़ल्ले से अंग्रेजी व उर्दू शब्द का प्रयोग किया है। फिर भी ये प्रयोग आरोपित नहीं लगते हैं। यही लगता है कि भीतर से उठी हुई अनुभूतियाँ खुद ब खुद इन शब्दों के पास इस मंशा से चली गई हैं कि तुम हमें अभिव्यक्त कर दो। फिर शब्द की क्या मजाल कि वह अनुभूतियों की मंशा को पूरी न करे। अंग्रेजी और उर्दू फारसी के शब्द प्रयोग से मिलकर बनी यह भाषा का रूप देखिए। क, ड्राइंग रूम काफ़ी खुला और बड़ा था, अकेले बैठने के लिए बहुत ही बड़ा। रात को वहाँ से गुजरकर पैंट्री में जाना पड़ता तो मीरा को अपने अंदर एक डर सा महसूस होता। ड्राइंग रूम का खालीपन एक तस्वीर की तरह लगता, दीवारों के चौखटे में जड़ी तस्वीर की तरह। बेडरूम के अलावा और सब कमरों की बत्तियां बुझाकर जब शंकर अपने क्वार्टर में सोने चला जाता तो किसी न किसी काम से रोज उसे उधर जाना पड़ता था। एक, ख, अखबारों के चीफ क्राइम रिपोर्टर ने 30,000 कैंटीन की ठंडी चाय के लिए छोकरे को डांट फटकार करते हुए सलाह दी, आप पहले यह काम कीजिए कि जाकर अपनी रिपोर्ट वापस ले लीजिए, थानेदार मेरा वाकिफ है। दो, ग, मिस्टर भंडारी के माथे पर हल्की सी शिकन थी। सुधीर की उपस्थिति में उनके माथे पर प्रायः यह शिकन पड़ जाती थी। सुधीर उनका कॉलेज के दिनों का दोस्त था, पर उसके पिता मिनिस्ट्री से संबंध थे, इसलिए वह बहुत शीघ्र उन्नति कर गया था। मिस्टर भंडारी को एक्साइज और टैक्सेशन के महकमे में जगह भी सुधीर के रसूल से ही मिली थी। यूं दोनों में खासी दोस्ती थी और रोज का साथ का उठना बैठना था। तीन, घ, मिसेस सिंह के चेहरे पर जो भाव आया वह कुछ कुछ फ्रांसीसी किस्म का था। कंधे भी उन्होंने खास कॉन्टिनेंटल अंदाज से हिलाए, इससे बाहें सोफे के बाहर फैल गईं। उन्हें समेटती हुई वह खड़ी हुई, उठकर एक जायजा लेती नजर उन्होंने नंगे फर्श पर डाली, दूसरी अपनी सैंडल पर और तीसरी चौखट की दहलीज पर। चार, नोट: एक, क्वार्टर फौलाद का आकाश, पृष्ठ 181। दो, पहचान एक ठहरा हुआ चाकू, पृष्ठ 121। तीन, पहचान आखिरी सामान, पृष्ठ 66। चार, पहचान सेफ्टी पिन कहानी, पृष्ठ 118। चार, इनके अतिरिक्त राकेश की कहानियों में कुछ ऐसे शब्द भी आए हैं जो ठेठ बोलचाल के हैं और ग्राम्य परिवेश की धरोहर है। इन पर प्रादेशिकता का रंग चढ़ा हुआ है। ऐसे शब्दों में मुंदी, विवाइयाँ, उचक्कर, झपकी, झुटपुटे, झंझट, गबरू जवान, माहिया, एकाध, छोटा झपट, मुटियार, दीदे, निपूते, नुए, गूंद कर, सेंकना, खामखा, तैश, दुबकना, गोडाई निराई, लार, लंबरदार और कुलच्छिनी आदि को लिया जा सकता है। स्पष्ट है कि राकेश की भाषा के जो तीन स्तर हैं उनमें उनका असली व्यक्तित्व व्यावहारिक भाषा का है। इसमें हर भाषा के शब्दों को आने की छूट है। हर तरह का वाक्य उन शब्दों से बन जाता है। आज के आदमी की स्थिति उसके परिवेश को स्पष्टता मूर्तित करने के लिए यही भाषा जनप्रिय भी है और यही व्यवहारिक व उपयुक्त भी है। रही मुहावरे दानी की बात, उसको राकेश ने बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया है। केवल वे ही मुहावरे उनकी भाषा के प्रवाह में आए हैं जो रोज़ाना की जिंदगी के अंग बने हुए हैं। उदाहरणार्थ, आँख मिचौली खेलना, गला छुड़ाना, गर्म मांस का चारा बनना, सिर पर वारना, गुर्दे दुरुस्त करना, जलकर राख हो जाना, शहीद हो जाना, सिर पर हाथ फेरना, आग बबूला होना, चेमगोइयां शुरू होना, फटी फटी आंखों से देखना, सिर पटकना, घर को आग लगाकर तमाशा देखना, गले में झाग उठना, नेकी और बदी की बदी, कान झटकना और दांत दिखाना व रोंगटे खड़े होना आदि, इन प्रयोगों को राकेश की कहानियों से छांटना पड़ा है। इसका तात्पर्य यह है कि राकेश की भाषा में मुहावरेदानी कम है। वे केवल वे मुहावरे ही अपनाते हैं जो जीवन का अंग बनते बनते आम भाषा के हो गए हैं। 5. राकेश की कहानियों में आई भाषा में रंगाई भी काफी है। वे प्रायः कवित्वमयी पंक्तियां लिखते हैं। रोमानी अंदाज में लिखी गई सैकड़ों पंक्तियां राकेश की भाषा को काव्यात्मक, अलंकृतिपूर्ण और चित्रात्मक भी बनाती हैं। काव्यात्मक भाषा के कारण कहानियों के बीच बीच में सूक्तियां भी आ गई हैं, जिससे भाषा अनेक अर्थ छवियों से दीपित हो उठी है। उसमें मन को बांधने का गुण है। भले ही इसे डॉक्टर शिवप्रसाद सिंह भावुकता का परिणाम कहे, किंतु मेरी दृष्टि में भावुकता क्या जीवन की अनिवार्यता नहीं है? क्या भावुक हुए बिना आज की पृष्ठ 129 परिस्थितियों में भी मनुष्य अपनी जिंदगी जी सकता है? नहीं जी सकता है। इसीलिए तो राकेश, जो जीवन के कहानीकार हैं, यदि भावुकतापूर्ण और काव्यात्मक व अलंकृत भाषा लिखते हैं तो उसे जीवन से कटी हुई भाषा नहीं माना जा सकता है। ऐसी काव्यात्मक भाषा का रूप उनकी अनेक कहानियों में मिलता है। क, उसे लगा कि सितारा लॉन की घास पर उतर आया है। वहां से आंख झपकता हुआ उसे ताक रहा है। वह उठी और रबड़ की चप्पल वहां छोड़कर लॉन में उतर गई। पास जाकर देखा, शबनम की एक अकेली बूंद उस सितारे को अपने में समेटे है। 1. ख, अपने कटे हुए रेशमी बालों को गर्दन पर फिसलाना उन्हें सदा रोमांचित कर देता था। उन्हें लगता जैसे किसी खरगोश के जिस्म से गर्दन को सहला रही है। 2. ग, वह उससे इस तरह लिपट गया जैसे डूबते आदमी के हाथ में किसी तैराक की बांह आ गई हो और वह किसी भी तरह उसे छोड़ना न चाहता हो। 3. घ, कितना विचित्र था वह क्षण, आकाश से टूटकर गिरे हुए नक्षत्र जैसा, कोहरे के वक्ष में एक लकीर से खींचकर वह क्षण सहसा व्यतीत हो गया। 4. च, किसी किसी क्षण आसमान एकाएक सुलग उठता है, फिर उसी तरह बुझा बुझा सा हो जाता है। बहुत से तेज जर्रे रोशनी में कांप उठते हैं। 5. छ, खिड़की के किवाड़ की छाया वामन के चरण की तरह तिरछी ऊपर की ओर जा रही थी। 6. ज, उसने अपनी कमीज कुहनियों से और सलवार पिंडलियों से ऊपर उठा रखी थी। गोरे मांस के उन स्वस्थ युवा पिंडों में निर्माण का कुछ ऐसा कौशल था कि उसे पास से देखकर मुझे कुछ वैसा भरी हुई नदी के तट से उसके मंथर प्रवाह को देखकर होता है। 1. 7. झ, कीमती से कीमती कपड़े उसके अंगों को छूकर जैसे मुरझा जाते थे। 8. अण, उसने चलने की बात कही तो मुझे लगा जैसे कपड़े उतार कर किसी ने मुझे ठंडे पानी में धकेल दिया हो। 9. ट, पूरब में अंधेरे की सतह पर एक हल्की लाल किरण तैरे आई थी। 10. ठ, नीम की टहनियों पर कांपती सुबह धीरे धीरे कमरे में उतर आई। धूप की चकत्तियां रोज की परिचित जगहों पर छितरा गईं। 11. स्पष्ट है कि राकेश की भाषा में पर्याप्त कवित्व शक्ति है। उनकी काव्यात्मक भाषा के कारण ही उन्हें नाजुक उंगलियों के सशक्त हस्ताक्षर कहा गया है। भाषा का यह काव्यात्मक रूप कहीं लक्षणा के सहारे और कहीं व्यंजना के सहारे अनेक नए संकेतों से भरा हुआ है। इसमें एक कलाकार की चित्रात्मक रुझान है, रूमानी संवेदना की दीप्त अर्थ छवियां हैं और है एक भावुकुल तन्मयता। नोट: एक क्वार्टर फौलाद का आकाश कहानी पृष्ठ 184। दो पहचान आखिरी सामान कहानी पृष्ठ 63। तीन पहचान गुनाह बे लज्जत कहानी पृष्ठ 194। चार वारिस एक और जिंदगी कहानी पृष्ठ 11। पाँच वारिस सोया हुआ शहर कहानी पृष्ठ 69। छः वारिस एक आलोचना कहानी पृष्ठ 94। सात वारिस हक हलाल कहानी पृष्ठ 146। आठ क्वार्टर सीमाएं कहानी पृष्ठ 53। नौ क्वार्टर ग्लास टैंक कहानी पृष्ठ 97। दस क्वार्टर फौलाद का आकाश कहानी पृष्ठ 184। ग्यारह क्वार्टर फौलाद का आकाश कहानी पृष्ठ 185। पृष्ठ 130। छः राकेश की भाषा में बिंब निर्माण की अद्भुत क्षमता है। ऐसे ऐसे शब्द बिंब अलंकृत और इंद्रिय बिंब उनकी भाषा में स्थान स्थान पर मिलते हैं कि पाठक मुग्ध भाव से उन सबको देखता रह जाता है। भाषा में बिंबोध भावन की यह क्षमता उन सभी स्थलों पर मिलती है जहां कहानीकार या तो नगरीय परिवेश को उभारता है या फिर प्रकृति की अछूती छवियों को या किसी पात्र की मानसिक स्थिति परिस्थिति को। बिंब गुण से युक्त भाषा का यह स्वरूप अनेक कहानियों में उपलब्ध है। उदाहरण के लिए ये पंक्तियां देखिए: जूते के मैले सिकुड़े हुए तलवे तिरछे होकर आधा आधा इंच ऊपर को सरक आए थे। पीछे की दोनों ओर की सीवने उघड़ रही थीं। उसे याद नहीं था कि यह जूता उसने कब खरीदा था। उसे खरीदे हुए कम से कम 2.5-3 साल हो चुके थे। जूते के दांत बहुत पहले ही पृष्ठ 131 निकलने लगे थे, पर राय उसे ठोक पीट कर लटकाता आ रहा था। कुछ महीने पहले सामने के जूते के होंठ भी खुल गए थे, पर राय ने मोची को चवन्नी देकर उन्हें बंद करा दिया था। मगर इसके बाद जब जूते की बगलें शिकायत करने लगीं, तो राय को बैठकर गंभीरता पूर्वक सोचना पड़ा। एक फटे हुए जूते की स्थिति का इससे अधिक प्रभावी बिंब और क्या हो सकता है? यह निश्चय ही एक मुंह बोलता चित्र है जो अपनी कहानी का आप गवाह है। इसी प्रकार परमात्मा का कुत्ता कहानी का प्रारंभ ही बिंब प्रधान भाषा शैली में किया गया है। उसमें सरकारी दफ्तर के बाहर के परिवेश और तत्संबंधित व्यक्तियों का यह बिंब देखिए। बहुत से लोग यहाँ वहाँ सिर लटकाए बैठे थे, जैसे किसी का मातम करने आए हों। कुछ लोग अपनी पोटलियाँ खोलकर सड़क के किनारे बिखर गए थे। छोले कुलचे वाले का बाजार गर्म था और कमेटी के नल के पास एक छोटा मोटा क्यू लगा था। नल के पास कुर्सी डालकर बैठा अर्जीनवीस धड़ाधड़ अर्जियां टाइप कर रहा था। उसके माथे से बहकर पसीना उसके होठों पर आ रहा था, लेकिन उसे पोंछने की फुर्सत उसे नहीं थी। सफेद दाढ़ियों वाले 2-3 लंबे ऊंचे जाट अपनी लाठियों पर झुके हुए उसके खाली होने का इंतजार कर रहे थे। कमीजों के आधे बटन खोले और बगल में फाइलें दबाए कुछ बाबू एक दूसरे से छेड़खानी करते रजिस्ट्रेशन ब्रांच से रिकॉर्ड ब्रांच की तरफ जा रहे थे। दो इसी प्रकार सोया हुआ शहर कहानी में आए बिंब कहीं रात्रि के निस्तब्धता के, कहीं कार व साइकिल के तेजी से चले जाने के और कहीं मकान की छतों के दृश्यों के बिंबों को उजागर करते चलते हैं। जब राकेश लिखते हैं कि मकान की छत पर टहलती छाया सड़क की तरफ झुक जाती है, औंधी रखी चारपाइयों के पाए उसके आसपास एक चौखटा सा बना देते हैं। तीन तो चाक्षुष बिंब पूरी प्रभावी शक्तियों के साथ पाठक के सामने आ जाता है। ध्वनि संवेद्य बिंब की दृष्टि से ये पंक्तियां देखिए: किसी घर में फ्लश का हत्था जोर जोर से हिलाया जाता है, छपाके के साथ फ्लश का पानी बहने लगता है। फिर वह आवाज़ हल्की किलकारियों में बदल जाती है और सुओं की आवाज़ में गुम हो जाती है। लगता है जैसे कोई हवा को लगातार अंदर खींच रहा हो। 4. नोट: 1. वारिस, फटा हुआ जूता, पृष्ठ 132. 2. वारिस, परमात्मा का कुत्ता, पृष्ठ 85. 3. वारिस, सोया हुआ शहर, पृष्ठ 68. 4. वारिस, सोया हुआ शहर, पृष्ठ 69. पृष्ठ 132. इसी प्रकार ये पंक्तियाँ भी देखिए जिनकी भाषा बिंबोद्भावन की क्षमता से युक्त हैं। कुछ देर खाली सड़क पर वह आवारा घूमती है। बस स्टॉप के पीछे मकान की छत पर एक छाया टहलती है। उस मकान और अगले मकान की छत पर लगे एरियल उखड़े शामियाने के बांसों की तरह नंगे और मनहूस हवा से कांप जाते हैं। सामने बुझी हुई चिमनी में एक कबूतर पंख फड़फड़ाने लगता है। ऊपर मकानों की तरफ से सीटी की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे रात के सन्नाटे में अपने अकेलेपन को भुलाने के लिए आसमान सीटी बजा रहा हो। 1. राकेश की बिंबमयी भाषा में कहीं कहीं भाव इतने सघन और अनुभूतियां इतनी सांद्र हो गई हैं कि उनके लिए वे छायावादी अलंकृत से काम लेने को विवश हो गए हैं। कोहरे भरे आकाश का यह बिंब देखिए, जो छायावादी शिल्प के पार्श्व में आसानी से रखा जा सकता है। कोहरा धीरे धीरे इतना घना हो गया कि बालकनी से आगे कोई रूप कोई रंग नजर नहीं आता था। आकाश की पारदर्शिता पर जैसे गाढ़ा सफेदा पोत दिया गया हो। कोहरे के बादल कई कई रूप लेकर हवा में इधर उधर भटक रहे थे। अपनी गहराई में फैलते और सिमटते हुए वे अपनी थाह नहीं पा रहे थे। बीच में कहीं कहीं देवदारों की फुनगियां एक हरी लकीर की तरह बाहर निकलती थीं, कुहरीले आकाश पर लिखी गई एक अनिश्चित सी लिपि जैसी। 2. कहने का तात्पर्य यही है कि यहाँ राकेश की भाषा चित्रगुण संवलित काव्य भाषा के काफी नजदीक है। उसमें रंग, स्पर्श, ध्वनि और दृश्य संवेदन को उभारने का जो गुण है, वह उनके समकालीन रचनाकारों में नहीं मिलता है। 7. राकेश की कहानियों की भाषा में जहाँ पर्याप्त काव्यात्मकता, चित्रात्मकता और अलंकृति है, वहीं उसमें प्रतीकात्मकता भी कम नहीं है। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का यह कहना सर्वथा उपयुक्त है कि राकेश की शैली में प्रतीकात्मकता का बहुत ही संचेत पुट दिखाई पड़ता है। 3. ग्लास टैंक, जंगला, फौलाद का आकाश, सेफ्टी पिन, जख्म, सोया हुआ शहर, मलबे का मालिक और जानवर आदि प्रतीकात्मक कहानियाँ हैं। इनके शीर्षक व्यंजक और गहरा प्रतीकार्थ रखते हैं। इन कहानियों में प्रतीक व्यापक स्तर पर कथ्य को उद्भासित करते हैं। मलबे का मालिक कहानी में मलबा मानव शरीर का प्रतीक है। शरीर मलबे का ढेर ही तो है, जो वृद्धावस्था को प्राप्त गनी मियाँ व रखे पहलवान के शरीर की स्थिति का प्रतीक है। यूं तो समूची कहानी भी प्रतीकार्थ भी स्पष्ट है। नोट: 1. वारिस, सोया हुआ शहर, पृष्ठ 68. 2. वारिस, एक और जिंदगी, पृष्ठ 15. 3. माध्यम, जनवरी 1968, पृष्ठ 70. पृष्ठ 133. भारत के विभाजन की विभीषिका से अवशिष्ट यह मलबा उस मलबे का भी अर्थ देता है, जो समाज के नित्य प्रति विगलित और जर्जरित होते बंधनों और मूल्यों के रूप में हमारी चौखट पर खड़ा है। मलबे पर बैठा रखा पहलवान समाज के उन ठेकेदारों का प्रतीक है, जो आज भी पुरानी परंपराओं को अपनी संपत्ति मानकर उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए प्रयत्नवान बने रहते हैं। बस स्टैंड की एक रात कहानी का लैंप पोस्ट मास्टर हरवंश लाल के व्यक्तित्व को भी संकेतित करता है। अतः कहानी का लैंप पोस्ट एक आश्रयदाता एवं प्रकाशमान शिक्षक का प्रतीक है। फौलाद का आकाश उस व्यक्तित्व का प्रतीक है जिससे प्रेम और करुणा की बूंदें तक नहीं बरसती हैं। ग्लास टैंक विवश, आत्मकेंद्रित किंतु मुक्ति कामी नारी का प्रतीकार्थ लिए हुए है। जानवर और जानवर का प्रतीक तो स्पष्ट है ही, वह इंसानी खाल के पीछे छिपी पार्श्विक वृत्तियों का भी प्रतीक है। जख्म बाहर का नहीं, भीतरी जख्म का संकेत देता है। सोया हुआ शहर का प्रतीकार्थ है अपराधग्रस्त और वासनाग्रस्त जीवन। इसी प्रकार सोया हुआ शहर कहानी में आए कतिपय अन्य प्रयोग यथा कबूतर का पंख फड़फड़ाना, एरियल का कांपना, औंधी रखी चारपाइयों के पाए का बना चौखटा, फ्लश के हत्थे का जोर जोर से हिलाया जाना और गत्ते की डिब्बियां और चमकते गोल सुनहरे पत्ते आदि सब के सब रात की बाहों में सोए शहर की गोद में चल रहे लड़कियों के अवैध व्यापार कर्म को ही संकेतित करते हैं। आठ, राकेश की भाषा में नाटकीयता का पर्याप्त प्रयोग हुआ है। अनेक कहानियों की भाषा शैली नाटकीय रंगत लिए हुए है। यह भाषा शैली राकेश की सर्वाधिक प्रिय शैली है। फौलाद का आकाश और जख्म कहानियों की भाषा नाट्य तत्वों से भरपूर है। उनकी शैली में नाटकीयता, आकर्षण और आकस्मिकता पर्याप्त मात्रा में है। भाषा की नाटकीयता की दृष्टि से ये पंक्तियां देखिए। ट्रैफिक के आवाज से हटकर एक और आवाज, आसमान में बादल की हल्की गड़गड़ाहट। मैंने ऊपर की तरफ देखा, जैसे कि देखने से ही पता चल सकता हो कि बारिश फिर तो नहीं होने लगेगी। एक, नाटकीयता की यह प्रवृत्ति जख्म कहानी के प्रारंभिक दो अनुच्छेदों में भी दिखाई देती है। हाथ पर खून का लोंदा, सूखे और चिपके गुलाब की तरह, फुटपाथ पर औंधे पीपे से गिरा गाढ़ा कोलतार, सर्दी में ठिठुरा और सहमा हुआ, एक दूसरे से चिपके पुराने कागज, भींगकर सड़क पर बिखरे हुए, खोदी हुई नाली का मलबा झड़कर नाली में गिरता हुआ, बिजली के तारों से ढका आकाश, रात की रंग में रंगता हुआ, चिकने माथे पर गाढ़ी काली भौहें, उंगली और अंगूठे से सहलाई जा रही। दो, नोट। एक, वारिस जख्म कहानी पृष्ठ 236। दो, वारिस जख्म कहानी पृष्ठ 225। पृष्ठ 234। यह अति नाटकीयता है जो प्रशंसनीय नहीं है। वाक्य गठन की यह अदा यानी संज्ञा पहले और कृदंत विशेषण अंत में इतनी कृत्रिमता पैदा करते हैं कि बहुत सी चीजों को एक में समेटने का लेखकीय उद्देश्य विफल हो जाता है। एक, कहानी की संवेदना बिखरने लगती है और प्रयुक्त शब्दावली अर्थहीन और मुर्दा होने का आभास देती हुई पाठक के मन में खींच पैदा करती है। ग्लास टैंक कहानी का प्रारंभिक अंश भी भाषा शैली की दृष्टि निरर्थक और उबाऊ है। 9, राकेश की भाषा शैली में उपयुक्त विशेषताओं के अतिरिक्त यथार्थ संदर्भों व स्थितियों को अभिव्यंजित करने की भी भरपूर क्षमता है। इस दृष्टि से जानवर और जानवर, जख्म, पांचवें माले का फ्लैट, मलबे का मालिक, परमात्मा का कुत्ता, सुहागिने, सौदा, मंदी, एक ठहरा हुआ चाकू और गुनाह बेलज्जत आदि कहानियों को लिया जा सकता है। संदर्भानुकूल व पात्रानुकूल भाषा की ही बात नहीं है, यहाँ तो परिवेश के अनुकूल भी भाषा शैली प्रयुक्त हुई है। यथार्थ स्थितियों की अभिव्यंजना में छोटे मोटे वाक्य सरल सपाट शैली और रंगहीन किंतु अर्थ गर्मित शब्दों का प्रयोग करने में भी राकेश कुशल दिखाई देते हैं। छोटे वाक्य, चुस्त शब्द और व्यंजक शैली का मिलाजुला रूप इन पंक्तियों में देखा जा सकता है। एक साइकिल मस्ती में चलती हुई गली की तरफ मुड़ जाती है, एक कार बिना हॉर्न दिए तेजी से निकल जाती है, कुत्ता मुश्किल से अपने को उसकी चपेट से बचाता है उसका घुर्राना भौंकने में बदल जाता है। दो, इसके साथ ही ये पंक्तियां भी देखिए जिनकी वाक्यावली न केवल संक्षिप्त है वरन पात्र की मन स्थिति की एक एक परत को उसके परिवेश के साथ उघाड़ती चलती है। हवा थी, गर्म भी थी, सामने गिरगांव की सड़क थी जो आसानी से क्रॉस कर सकता था मगर घर आने को मन नहीं था, खाना खाने जाने को भी मन नहीं था, न ईरानी के यहाँ, न गुजराती के यहाँ, न ब्रजवासी के यहाँ। रोज तीनों जगह बदल बदल कर खाता था, एक का जायका दूसरे से दब जाता था, पैसे अदा करने में सहूलियत रहती थी, चेहरे भी नए नए देखने को मिल जाते थे, शिकायत भी तीनों से की जा सकती थी। कहीं कहीं छोटे छोटे वाक्यों के सहारे घटना चक्र को जिस कुशलता के साथ अभिव्यक्ति दी गई है वह राकेश की भाषा सामर्थ्य को ही घोषित करता है। नोट, एक, माध्यम जनवरी 1968, पृष्ठ 68। दो, पहचान, पांचवें माले का फ्लैट, पृष्ठ 215। पृष्ठ 135। फोटो हाथ में लेकर देखता रहा, फिर वहीं रखकर किताब बंद कर दी, उसे पलंग पर छोड़कर उठ खड़ा हुआ, फिर पलंग से उठाकर मेज पर रख दिया और खिड़की के पास चला गया, लौटकर कुर्सी पर आ गया, कितनी ही देर बैठा रहा, फिर एकाएक उठकर किताब को हाथ में ले लिया, फिर वहीं रख दिया, अंदर जाकर छुरी ले आया और डबल रोटी काटने लगा, फिर आधे कटे इल्हास को वैसे ही छोड़कर खिड़की के पास चला गया। एक, इन पंक्तियों की भाषा पात्र की मन स्थिति के जल्दी जल्दी बदलने को व्यक्त करती है। पात्र के मनोभावों के अनुसार एक अस्त व्यस्त मन स्थिति के अनुरूप ही यहाँ वाक्य भी उल्टे पलटे व अस्त व्यस्त हैं। फिर शब्द का अनेक बार प्रयोग मानसिक अस्त व्यस्तता को रेखांकित करने में सहायक तो है, किंतु यह सब एक समर्थ द्वाशा प्रयोक्ता राकेश के शिल्प के अनुरूप नहीं लगता है। संक्षेप में कह सकते हैं कि राकेश की कहानियों की भाषा सीधी, सहज, सपाट, अर्थोद्घाटक, सांकेतिक, व्यंजक, काव्यात्मक और चित्रात्मक तो है ही, उनमें परिवेश व संदर्भ के अनुकूल यथार्थ व्यंजक शब्दावली, व्यंगात्मक उक्तियां, वर्तमान जीवन की त्रासदी को व्यक्त करने वाले शब्द प्रयोग और नाटकीय शैली युक्ति प्रयोग भी भरपूर हैं। यो उनकी भाषा एक आधुनिक कलाकार की भाषा है। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह के शब्दों में वह साहब स्टाइल भाषा है। दो, क्योंकि इसमें जितनी साहित्यिकता और काव्यात्मकता है उतनी ही सपाटता व सहजता है। वह एक ओर अलंकृति युक्त है तो दूसरी ओर सहज यथार्थ की व्यंजक और आवरणहीन भी है। जहाँ तक शैली का प्रश्न है वह भी चित्रात्मक, व्यंजक, लाक्षणिक, आत्मपरक और अनुभूति संविलित है। इतना ही नहीं, आधुनिक युग की त्रासद, भयावह और उबाऊ स्थितियों की व्यंजना के लिए जिस तरह की ढांचाहीन भाषा आज अपेक्षित है वह राकेश की कहानियों में सहज ही मिल जाती है। वह रवानगी से भरी हुई, प्रभाव व प्रवाह से रंगी हुई, झिझक से दूर एक आधुनिक कहानीकार की भाषा है। कहानी के शिल्प और शैली पर पूरा अधिकार, टकसाली प्रवाहमान भाषा, अभिव्यक्ति का अद्भुत कौशल, कहीं कहीं किंचित भावुकता और आदर्शवादिता राकेश की उत्कृष्ट कहानियों के गुण हैं। तीन, नोट, एक, पहचान, पांचवें माले का फ्लैट, पृष्ठ 219। दो, माध्यम, जनवरी 1968, पृष्ठ 68। तीन, उपेंद्रनाथ अश्क, हिंदी कहानी, एक अंतरंग परिचय, पृष्ठ 253। मूल्य विमर्श। राकेश की कहानियां स्थायी महत्व की कहानियां हैं। उनमें राकेश ने समकालीन जीवन के सुखद दुखद प्रसंगों, जीवन में भरती जा रही ऊब अकेलापन और पृष्ठ 136 उदासी का अंकन जिस सूक्ष्मता के साथ किया है उतनी ही गहराई से मानव मानव के संबंधों को उनकी पूरी कटुता, तिक्तता और त्रासदी के साथ व्यक्त किया है। इस प्रकार से राकेश की कहानियां मानव संबंधों, मानवीय मूल्यों और समकालीन परिवेश में सांस लेते मनुष्य की कहानियां हैं। उनमें प्रतिपादित अनुभूतियां कच्ची नहीं हैं, वे तो लेखकीय मानस में घुट पिट कर रसायन बन गई हैं। उनका असर कहीं तेज और तिक्त है तो कहीं मीठा और मादक। वे कभी पाठकीय संवेदना को सहलाती हैं तो कभी धक्का देती हैं। उनमें तेजाब की गंध है और शरबत का स्वाद भी। वे समकालीन परिवेश के ताप संताप, भय अकुलाहट, सुरक्षा असुरक्षा, आत्मीयता परायापना, निजता बेगानापना और सर्द गर्म श्वासों की वाष्प से गंधित है। यदि हम कतिपय प्रयोगशील कहानियों को छोड़ दें तो राकेश की कहानियां नक्श से शिख तक चुस्त और दुरुस्त हैं। उनका शिल्प सधा हुआ, सहज और आत्मीय है। अनुभूत सत्य के अभिव्यंजन के कारण राकेश की कहानियां गहरे यथार्थ को उद्घाटित करती हुई मार्मिक बन गई हैं। स्थितियों को यथार्थ की खुली नजर से देखने के कारण राकेश की कहानियों का न केवल कथ्य वरन शिल्प भी आत्मीय, विश्वस्त और प्रभावी बन गया है। कहीं शिल्प में रचावट और कहीं संवेदना के रंग में रंग कर निखरी हुई भाषिक संरचना है, वह आधुनिक कहानियों के इतिहास में उनकी सामर्थ्य की परिचायिका है। रहे उनके पात्र, वे विराट मानवीय चेतना का आभास देते देते अंतर्मुखी होकर रह गए हैं। उनमें से अधिकांश अकेलेपन व अजनबीपन का बोझ ढोते ढोते घुटनशील माहौल में डूब गए हैं। एक वाक्य में, ये जीवन की त्रासदी के प्रतिरूप हैं। अतः राकेश की कहानियां भी पात्रों की स्थिति के अनुरूप अपने परिवेश में ढली समकालीन जीवन के ट्रेजिक विजन और टेंशन की यथार्थवादी अभिव्यक्ति हैं।